धौला पुस्तक नववी लेक्चर नंबर 12 ओ नमः सिद्धेर्य ओ नमः सिद्धेर्य ओ नमः सिद्धेर्य ओ शुद्धात्मने नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वैच्छायाणम् नमो लोए सौवसाहूणम् सिद्धादद्धट्टमला विशुद्धबुद्धियेलथ सौवत्था तिहुवन शिरसे हरया पश्यन्तु भडारया सवे। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो चौथा खंड है उसका नाम है वेदना और उसका कृति अनुयोग द्वार यहाँ चल रहा है। इस नववी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 113 पर हम आ गए, 113। यहाँ बात ये हो रही थी कि ग्रंथकर्ता कौन है, मंगल के प्रकरण में ग्रंथ के कर्ता कौन है, तो मूल ग्रंथकर्ता सर्वज्ञ भगवान है। तो यहाँ जो उसकी जो प्रमाणता है उसको द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा वहाँ सिद्ध करने की बात हो रही थी, यानी ग्रंथ की प्रमाणता को बताना है द्रव्य से क्षेत्र से काल से और भाव से। तो उसमें द्रव्य से में महावीर भगवान का शरीर कैसा है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था और शरीर के आधार से उनकी जो परिणति है उसका भी यहाँ वितरागता का भी वर्णन विस्तार से हुआ। उसके बाद ये जो समो शरण आ गई, ये तीर्थ की यानी उपदेश की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई, क्षेत्र की बात है, तो फिर समो शरण का पूरा वर्णन आ गया। कल तो हमने पूरा समो शरण का ही वर्णन पढ़ा। अब यहाँ कहते प्रश्न पूछते इस पर पेज नंबर 113 पर शंका, क्षेत्र प्ररूपणा तीर्थ की प्रमाणता की ज्ञापक कैसे है। तीर्थ यानी उपदेश, तो उपदेश सही है वो क्षेत्र की प्ररूपणा से कैसे ज्ञात होगा। समोसरण का वर्णन किया और उससे तीर्थ का तीर्थ सही है प्रमाण है ये कैसे नक्की हुआ। समाधान, क्योंकि वह वर्धमान भगवान की सर्वज्ञता का चिन्ह है। समोसरण जो है तो जो सर्वज्ञ केवली भगवान है तीर्थंकर होते उनके समोसरण होता है, तो उसी से वो सर्वज्ञ है उसका वो चिन्ह है कहते हैं। फिर शंका पूछते हैं, भगवान वर्धमान सर्वज्ञ थे यह कैसे सिद्ध होता है। उसका समाधान, 14 विद्या स्थानों के बल से समस्त भुवन को देखने वाले अवधि ज्ञान से अपने अवधि क्षेत्र के भीतर स्थित संपूर्ण जीवों के कर्म स्कंधों को प्रत्यक्ष करने वाले सभी जीवों के तथा चार घातिया कर्मों के नष्ट होने से नव केवल लब्धियों को और अघातिया कर्मों के संबंध से मूर्त भाव को प्राप्त ऐसे जिन भगवान को देखने वाले सौधर्मेंद्र द्वारा की गई उनकी पूजा चूंकि बिना सर्वज्ञता के बनती नहीं है अतः सिद्ध है कि वर्धमान भगवान सर्वज्ञ थे। देखो क्या कहना चाहते हैं, पहले जिनेंद्र भगवान की बात है, जिनेंद्र भगवान को देखने वाले सौधर्मेंद्र वो किसको देख रहे हैं, तो जिनेंद्र भगवान को देख रहे और उनकी पूजा कर रहे हैं, उसी से उनकी सर्वज्ञता सिद्ध हो रही है। और ये जिनेंद्र भगवान कैसे है, तो 14 विद्या स्थानों के बल से समस्त भुवन को देखने वाले, ये विद्या स्थान किसको कहा, यानी सभी विद्याओं उनके प्राप्त है इस तरह से। यानी पूरे सर्वज्ञ भगवान तो है ही और केवल ज्ञान से सबको जानते हैं। 14 विद्याएं बताई, विद्या स्थान कुछ अलग से बताई, शायद वो जो विद्या आदि है ना, वो जानने वाले, उसमें भी 14 मुख्य कोई विद्या होती होगी, उसको तो ये भी जानते हैं ना।
कहते हैं 14 को तो जो गौड़ी ज्ञान होता है वो सर्वांगी होता है।
क्या क्या
सर्वांग को इंद्र को
ना 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 ना
औदी ज्ञान से अपने औदी क्षेत्र के भीतर संपूर्ण जीवों का कर्म संघ को प्रत्यक्ष करने वाले ये हम लोग को सौदर्य में मिलने की बात है। तो उनका औदी ज्ञान
नहीं 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 अभी चार घातीय कर्मों के नष्ट होने से किसका विशेषण है?
वो तो जी तो वहाँ पे तो भगवान
जिनेन्द्र भगवान का है।
हाँ तो भगवान तो केवल ज्ञान ही है।
हाँ
वहाँ पे उनका औदी ज्ञान
अवधि ज्ञान पूर्वक लिया होगा क्योंकि और सौधर्म का संपूर्ण जीवों के कर्म स्कंदों को प्रत्यक्ष नहीं जानते। हाँ ये तो सारे जो विशेषण है वो भगवान के है।
जिन भगवान को देखने वाले सौदर्भ इंद्र उसके पूर्व में जो बताया है तो सौदर्भ इंद्र की बात है ना?
नहीं न वो केवल लब्धियों को क्या है न वो केवल लब्धियों को रघातिया कर्मों के संबंध से मूर्त भाव को प्राप्त ऐसे जिन भगवान को देखने वाले अच्छा प्रत्यक्ष करने वाले अवधि क्षेत्र के भीतर संपूर्ण बराबर अवधि क्षेत्र के भीतर ये कंडीशन लगाई ना उन्होंने यानी वो पहला वाक्य भले सौधर्म इंद्र के लिए बताया पहला वाक्य सौधर्म इंद्र के कौन सा 14 विद्या स्थानों के बल से समस्त भुवन को देखने वाले और अवधि ज्ञान के अपने अवधि क्षेत्र के भीतर स्थित संपूर्ण जीवों के कर्म स्कंदों को प्रत्यक्ष करने वाले पेज नंबर 113 है ये सौधर्म इंद्र हुए और क्या हो रहे वो और जिनेन्द्र भगवान को देखने वाले अभी तो ठीक लगा ना यानी ये 14 विद्याएं वो इंद्रों की बताई है सौधर्म की बताई अवधि ज्ञान से अपने क्षेत्र के भीतर वाली समस्त सभी संपूर्ण अनंत जीव राशि को नहीं लिया है हाँ पेज नंबर 113 वो जिनेन्द्र देखो पहला वाक्य है तथा के पहले वाला वो इंद्र के लिए प्रत्यक्ष करने वाले कौन है सौधर्म इंद्र फिर से मैं वाक्य पूरा पढ़ती पेज नंबर 113 नीचे का समाधान यानी भगवान वर्धमान सर्वज्ञ थे कैसे सिद्ध हुआ ये प्रश्न पूछ रहे आपको विद्या की बात मिली क्या 14 विद्या ने तो कहते 14 विद्या स्थानों के बल से समस्त भुवन को देखने वाले ये सौधर्म इंद्र की बात हो रही है अवधि ज्ञान से अपने अवधि क्षेत्र के भीतर हमने देखा था सौधर्म जो डेढ़ राजू तक है तो उनका अवधि क्षेत्र नीचे भी पहली पृथ्वी तक उनका अवधि क्षेत्र है अपने अवधि क्षेत्र के भीतर वो तो त्रस नाली वाली बात है उसमें स्थित संपूर्ण जीवों के कर्म स्कंधों को कर्म का स्कंद तो बहुत बड़ा है वो तो देशावधि का विषय होता है ख्याल में क्योंकि देशावधि का द्विचरम भेद भी कारमाण वर्गणा को जानता है वर्गणा जुदी है और ऐसी अनंतानंत वर्गणा एक समय प्रबंध में होती है और ऐसे डेढ़ गुणा गुणित समय प्रबंध प्रमाण तो कर्म का स्कंद होता है तो ये तो बहुत स्थूल है उनके लिए विषय
तो उनको इतना ख्याल आएगा कि चार घातियों कर्म का नष्ट किया है भगवान ने
क्यों नहीं होगा वो तो संपूर्ण जीव राशि निगोद के भी कर्म स्कंदों को जानेंगे कि नहीं जानेंगे कर्म स्कंद तो बहुत स्थूल है उनके नहीं 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 त्रस नाली के जितने ऊपर है उतना ही नीचे तो पहले पृथ्वी तक हमने देखा था निकालो इसी पेज में हाँ हाँ नहीं निकाल के बताओ देशावधि में उसके तो उसमें देवों के भी अवधि क्षेत्र बताया है नहीं 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 बस 36 तक मैं आप आई हूँ, उल्टा 26 में मिला है अरविंद भाई को। हाँ, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव मिला, 26 पेज पर है इसी पुस्तक में। प्रथम पृथ्वी तक जानते हैं, मैंने बोला था ना प्रथम पृथ्वी तक, यानी त्रसन आली पूरी और प्रथम पृथ्वी तक। नहीं, नीचे कहाँ तक वो है, अपने ऊपर तो अपने ध्वजदंड तक ही उनका अधिक्षेत्र होता है। कर्म स्कंध जानते हैं क्योंकि उनका द्रव्य की अपेक्षा तो कितने सूक्ष्म तक को जानते हैं वो, तो इसलिए कर्म स्कंधों को जानेंगे वो। नहीं, इतना नहीं होगा उनका। उनका ये प्रश्न है, विहार करके गए तो उनका नीचे कहाँ है, तो नीचे प्रथम पृथ्वी तक ही उनका अवधि क्षेत्र है। नहीं, क्योंकि ये संदृष्टि अधिकार में कहाँ ऊपर कहाँ से नीचे कहाँ तक, ऐसे पूरी फिगर है उसके। नहीं तो 16वें स्वर्ग से पहले पृथ्वी तक ऐसा कहीं पर भी नहीं आया है। और उसके जो क्षेत्र की अपेक्षा जो विकल्प है ना अलग अलग, पहले तो हमने विसर सोच सहित वगैरह वगैरह बातें देखी थी। ये बात 38 पेज पर भी है। मैंने वहां तो ये बताया है समाधान में, पहले 14 गाथा की टीका में पेज नंबर 38 पर, यानी देशावधि के मध्य विकल्पों में जहाँ अवधि ज्ञान तेजस शरीर, उसके आगे कारमान शरीर, उसके आगे तेजो द्रव्य, ये जो अलग अलग जो द्रव्य की अपेक्षा जो अलग अलग जिसको हम माइलस्टोन्स कहेंगे, यहाँ ये तहाँ तक जानता है, यहाँ तक मध्य विकल्पों के अलग अलग भेद बताए। अभी अपने मूल पेज पर आना, 113 पर फिर पढ़ते यहाँ पर। ये सौधर्म इंद्र भगवान महावीर की पूजा कर रहे हैं, इससे उनकी सर्वज्ञता सिद्ध कर रहे हैं। कैसे के ये जो सौधर्म इंद्र है वो 14 विद्या स्थानों के बलुदेव विद्याएं है। अवधि ज्ञान से अपने अवधि क्षेत्र के भीतर, उनका अवधि क्षेत्र नीचे एक पहली पृथ्वी तक है त्रसनाली पूरी, तो वहाँ जितने जीव है भले वो निगोद भी क्यों ना हो, क्योंकि कर्म स्कंध का साइज तो वैसा लिया है। एक राजू भाई एक राजू, और उनके अपने विमान से लेकर नीचे पहली पृथ्वी तक इतनी जो एरिया होगी उतना लेना, तो संपूर्ण जीवों के कर्म स्कंधों को प्रत्यक्ष करने वाले। अवधि ज्ञान तो प्रत्यक्ष ही होता है, भले विकल है पर है प्रत्यक्ष, तो उनके दूसरों के कर्म स्कंध जानेंगे कि नहीं वो। तथा ये कौन है, सौधर्म इंद्र है, और वे किसको देख रहे हैं, चार जिनेन्द्र भगवान को देख रहे हैं। वे कैसे, चार घातिया कर्मों के नष्ट होने से नव केवल लब्धियों को प्राप्त, ऐसे जिनेन्द्र भगवान। और कैसे है, अघातिया कर्मों के संबंध से मूर्त भाव को प्राप्त, ऐसे जिन भगवान। अघातिया कर्मों के संबंध से मूर्त भाव, क्योंकि संसारी जीवों को कथनचित मूर्त क्यों कहते हैं, क्योंकि वो तो कर्म स्कंध से अनादि से जुड़े हुए, इसलिए उसको कथनचित रूपी भी कहने में आता है, मूर्त भी कहते हैं। तो अभी वो मूर्त भाव को क्यों प्राप्त है, अभी चार अघातियां बाकी हैं, तो इनका कर्म स्कंध भी वो जानेंगे कि नहीं जानेंगे, सौधर्म इंद्र ये कह रहे। जिनेन्द्र भगवान को देखने वाले सौधर्म इंद्र द्वारा की गई उनकी पूजा, सौधर्म इंद्र उनकी पूजा कर रहे हैं। ये पूजा ही क्या बताए, चूंकि बिना सर्वज्ञता के बनती नहीं है, यानी वो सर्वज्ञ है इसीलिए उनकी पूजा कर रहे सौधर्म इंद्र। अतः सिद्ध है कि वर्धमान भगवान सर्वज्ञ थे। अब इस पर स्वयं आचार्य कह रहे हैं कि इसमें कोई दोष भी नहीं आता, क्योंकि जो 10 पूर्वधारी हो जाते हैं विद्यानुवाद पढ़कर, तो उसकी भी व्यंतर आदि आके पूजा करते हैं, और यहाँ पर भी ये पूजा कर रहे हैं, तो वहां तो भी सर्वज्ञ तो नहीं हुए दस पूर्वधारी। देखो यहाँ क्या कहते हैं, यह हेतु, ये जो हेतु दिया है ना सर्वज्ञता सिद्ध करने के लिए, जो यहाँ कारण बताया है, यह कारण यह हेतु विद्यावादियों की पूजा से व्यभिचरित नहीं होता। विद्यावादी यानी विद्यानुवाद पढ़कर, दसवें पूर्व पढ़कर जो विद्याएं हासिल होती है, इसको दशपूर्वी कहते हैं, जो दशपूर्वी होते हैं वहाँ उनकी पूजा की व्यंतर आके उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि अल्परिद्धि व ज्ञान युक्त, ये व्यंतर कैसे अल्परिद्धिधारी है और अल्प ज्ञान युक्त है, व्यंतर देवों द्वारा की गई पूजा का महारिद्धि व ज्ञान से संयुक्त। देवेंद्र कैसे है, ये सौधर्म इंद्र, कि वो उनकी रिद्धि भी महान है और ज्ञान भी ज्यादा है, अधिक है। देवेंद्रों द्वारा की गई पूजा के साथ कोई साधर्म नहीं, उसमें कोई समानता नहीं है, ये इनका कहना है। अथवा देवेंद्र की कांति से लिखो, वहां बीच में देवेंद्र की कांतिहीनता को नहीं, ऊपर देखो 114 में पहली लाइन प्राकृत की, कोई पूजा सह सहमा भाव दो, देवीन दिच्छायाए विच्छायम गच्छंती, देवेंद्र की छाया से विच्छायम गच्छती, देवेंद्र की छाया ने उनकी कांति, देवेंद्र की कांति से कांतिहीनता को प्राप्त होने वाली, यानी देवेंद्र के ऊपर जो अगर पढ़ते हैं छाया से विच्छायम गच्छती, यानी वो व्यंतर उनके सामने कैसे विच्छाया, और देवेंद्र कैसे वो छाया वाले, छाया ने यह कांति लेना। देवेंद्र की बात एक शब्द डालो, कांति से यानी देवेंद्र की कांति बहुत ज्यादा है, उसके सामने कांतिहीनता को प्राप्त होने वाली व्यंतरकृत पूजा में इंद्रकृत जिन पूजा के समान स्थिरता न होने से दोनों में साधर्म्य का अभाव है। यानी वो जो पूजन वगैरह करती है तो उसमें साधर्म्य नहीं है, इंद्रों द्वारा की पूजा और व्यंतरों द्वारा की पूजा इसमें साधर्म्य नहीं, बस इतनी बात बताए। शंका, जिन द्रव्य अर्थात जिन शरीर की महिमा को देखने वाले वह देवेंद्र स्वरूप के जानकार जीवों के, वह जिन देव की सर्वज्ञता का कहा गया साधन भले ही बन सकता हो। क्या कहते हैं कि जिनको जिनेंद्र भगवान की शरीर की महिमा देखकर उनके सर्वज्ञता का भान होता होगा, या जो सौधर्म देवेंद्र ने सौधर्म इंद्र के स्वरूप के जो जानकार है उनको तो ये भासित होगा, परंतु शेष जीवों के नहीं बनता। ऑर्डिनरी अन्य सामान्य जनों को ये क्या समझेंगे कि ऐसी पूजा कोई भी किसी का करता होगा, क्योंकि उनके उक्त साधन विषय ज्ञान का अभाव है। यानी उनको ये मालूम नहीं कि सौधर्म की कितनी क्या रिद्धियाँ कैसी है, कितना ज्ञान है, क्या क्या जान सकते, उनको तो पता नहीं है। और साधन ज्ञान से रहित व्यक्ति के, साधन यानी उनके पास ये जानने का कोई ऐसा तरीका नहीं है, तो उससे रहित जो जीव है उनके लिए साध्य विषय ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। हमारा साध्य क्या है कि जिनेंद्र भगवान को सर्वज्ञता है, ये हमारा साध्य है, हमको प्रूव करना है, क्योंकि ऐसा होने में अति प्रसंग दोष आता है, ये शंकाकार की शंका है। अब उसका समाधान, इस उत्तर में कहा गया है कि जिस इस प्रकार से जिन भाव के ज्ञापनार्थ भाव प्ररूपणा करते हैं, यानी जिन भाव यानी जिनेंद्र भगवान की जो सर्वज्ञता उसको बताने के लिए भाव प्ररूपणा करते, वो इस प्रकार है, जीव जड़ स्वभाव नहीं है, क्योंकि विसंवाद रहित स्वभाव वाले स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से अजड़ स्वभाव जीव पाया जाता है। इन्हें जीव ज्ञान स्वभावी है, जड़ स्वभावी नहीं है, और विसंवाद रहित यानी उसमें कोई दूसरा पक्ष भी नहीं है, क्योंकि विरोध भी उसमें कुछ हो नहीं सकता कि जीव तो जानने का कार्य तो कर ही रहे हैं, वो तो जीव जीव ज्ञान स्वभावी है, उसी को अजड़ स्वभाव कहा। जो जड़ नहीं वो अजड़, और अचेतन जीव चेतना गुण के संबंध से चेतना स्वभाव भी नहीं है। कोई ऐसे मानते हैं कि जीव में तो जीव तो जड़ है और चेतना गुण के संबंध से वो जानने का कार्य करता है, यही विषय चल रहा है हमारा पंचासिकाएं में, बहुत उसके विस्तार से सिद्ध कर रहे हैं। तो कहते हैं उसको कहते कोई ऐसे मान्यता वाले मत है कि जो जीव है और वो ज्ञान उसके साथ समवाय को यानी इकट्ठा हो जाता है, उससे युत हो जाता है और फिर वो जानने का कार्य करता है। तो कहते अगर वो ज्ञान होने पर वो अगर उस जीव जानता है तो वो ज्ञान उसके साथ समवाय नहीं हुआ तब जीव ज्ञानी था कि अज्ञानी था, यानी बहुत लंबी ऐसे न्याय की भाषा में विस्तार चल रहा है अभी, यही यहाँ कहते। अचेतन जीव चेतना गुण के संबंध से चेतना स्वभाव भी नहीं है, क्योंकि अगर गुण तो पहले से अनादि से होता है, उसमें बाद में कोई आके गुण मिला और बाद में उसने जानने का कार्य किया, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने पर स्वरूप की हानि का प्रसंग आता है। क्योंकि द्रव्य और गुण का कैसा संबंध है याद है, नित्य तादात्म्य में। हाँ
चौदह विद्या स्थानों के बल से जो सौदर्भ इंद्र को बताया तो उनको वो भाव में उतना ज्ञान होगा कि पूर्व भाव के ज्ञान से,
ना 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 उसी भाव की बात है ना, चौदह विद्याओं के बल से उनके उतना ज्ञान का उघाड़ होगा ना वहाँ पर, उसी की तो बात कर रहे हैं, पूर्व भाव की बात नहीं। यहाँ पर ज्ञान होना अलग बात है, पर तो कितना ज्ञान चल रहा है वो तो सारा पूर्व में सीखा और अभी सब याद आ रहे, ऐसी बात नहीं हो सकती। वो उस पर्याय का ज्ञान होगा कि नहीं होगा, हम आप जो यहाँ ज्ञान कर रहे हैं वो हमारा वर्तमान का है क्या पूर्व का चल रहा है? ज्ञान तो उसी को कहते हैं जो वर्तमान में हो रहा है उनको। अभी ये जो चल रहे हैं ना उसको पढ़ो, नहीं तो आपको दिमाग में प्रश्न चलेगा और यहाँ का विषय छूट जाएगा। यहाँ तो ये हो रहा है कि जीव चेतन स्वभावी है और बाद में चेतना गुण का संबंध हुआ, उसने जाना वो तो अचेतन था और चेतना गुण के संबंध से जानने लगा, ऐसा भी नहीं है क्योंकि ऐसी मान्यता वाला एक मत है। दूसरी बात, जीव चेतना रहित हो नहीं सकता, यानी पहले चेतना थी और बाद में निकल जाए, ऐसा नहीं। ये दोनों ही जो पक्ष बता रहे उसमें दोनों में क्या सिद्ध होता है, गुण तो द्रव्य अनादि अनंत है, उसका तो नित्य तादात्म्य संबंध है, बाद में कोई गुण आके मिला हो या जो है वो निकल गया हो ऐसा हो ही नहीं सकता, उसमें लिए कितनी दलीलें हैं ना। अभी हमने नित्य तादात्म्य संबंध कहा, अगुरु लघुत्व गुण है कि कोई गुण उसमें से बाहर निकल नहीं जा सकता, बाहर से कोई आ नहीं मिल सकता। तो कहते जीव चेतना रहित हो नहीं सकता क्योंकि ऐसा होने से उसके अभाव का प्रसंग आता है। चेतना ही नहीं रही तो जीव द्रव्य भी नहीं रहेगा, ये कहना चाहते हैं। वही इस प्रकार से इंद्रिय ज्ञान के द्वारा तो आत्मा का ग्रहण होता नहीं है, यानी आत्मा का आत्मा को जो जानते हैं वो इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। क्यों नहीं? इंद्रियों का विषय तो पुद्गल है, रूपी है, मूर्त है। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का व्यापार बाह्य अर्थ में पाया जाता है, बाह्य अर्थ ने बाह्य पदार्थ, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से आत्मा का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चेतन स्वभाव होने से उक्त प्रत्यक्ष जड़ जीव में संभव नहीं है। क्या कहें कि जीव को अगर जड़ मानेंगे तो की बात है, जीव जड़ नहीं है ये सिद्ध कर रहे हैं। पहले में पहले क्या कहते हैं, जीव चेतना रहित तो हो नहीं सकता, एक बात तो इंद्रिय ज्ञान के द्वारा आत्मा का ग्रहण नहीं होता, उसका बाह्य अर्थ में होता है, फिर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से आत्मा का ग्रहण नहीं होता क्योंकि चेतन स्वभाव होने से उक्त प्रत्यक्ष जड़ जीव में संभव नहीं है, यानी ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान जड़ जीव में संभव नहीं, जो जिसने माना है जड़ जीव उसमें ये बात संभव नहीं है। अनुमान से भी आत्मा का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रकार के प्रत्यक्षों के अविषयभूत जीव के साथ अविनाभाव संबंध रखने वाले लिंग का ग्रहण संभव नहीं है। देखो, जो जीव को जड़ मान रहा है उसके पास ज्ञान ही नहीं है, तो स्व संवेदन प्रत्यक्ष से आत्मा का ग्रहण कैसे करेगा, ये बात है। ख्याल में नहीं बात? हाँ। क्योंकि ऐसा चेतन स्वभाव होने से उक्त प्रत्यक्ष, ऐसा प्रत्यक्ष जड़ जीव में संभव नहीं है। ये जीव को जड़ मानकर की बात चल रही है। अब जीव जड़ हो तो अनुमान से भी आत्मा को ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि जो दोनों प्रकार के प्रत्यक्षों के विषयभूत जीव के, ऐसा कौन सा जीव लिया, ये जड़ जीव लिया, तो उसके साथ अविषयभूत जीव के साथ अविनाभाव संबंध रखने वाले लिंग का ग्रहण संभव नहीं है। वो ये लिंग क्यों, उसके लिए वो अलिंग ग्रहण सबको मालूम होना चाहिए, उसमें अनुमान मात्र से नहीं ग्रहण होता वगैरह वगैरह बात होती है। तो उसका अगर ज्ञान है, अभी याद है, तो ये बात आपको पता चलेगी। आगम से भी आत्मा का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि अपौरुषेय आगम का अभाव है। यानी आत्मा का जानना आगम से नहीं हो सकता है। अपौरुषेय, पौरुष ने किसी पुरुष ने निर्माण किया उसको पौरुषेय कहेंगे, और ये सर्वज्ञ की बात कैसी अपौरुषेय है। यदि पौरुषेय आगम से उसका ग्रहण माना जावे तो वह भी नहीं बन सकता सर्वज्ञ, क्योंकि सर्वज्ञ के बिना पौरुषेय आगम का अभाव है। तथा पहले जब सर्वज्ञ सिद्ध हो तब उससे पौरुषेय आगम सिद्ध हो, और जब पौरुषेय आगम सिद्ध हो तब उससे सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध हो। इस प्रकार अन्योन्य आश्रय दोष का प्रसंग भी आता है, क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी के द्वारा वो गणधरों ने सुनकर उसकी रचना की है, तो सर्वज्ञ मानना पड़ेगा और फिर आगम सिद्ध होगा पौरुषेय, और पौरुषेय आगम से सर्वज्ञता सिद्ध होगी। अन्योन्य आश्रय है, इससे वो सिद्ध होता है, उससे ये सिद्ध होता है। इस कारण जीव नहीं है, क्योंकि वह समस्त प्रमाणों की विषयता से रहित है। इस प्रकार प्रसंग प्राप्त जीव का अभाव न हो, एतदर्थ जीव सचेतन है ऐसा स्वीकार करना चाहिए। ये सब जो उन्होंने दलील दी है, जीव को जड़ मानकर अगर हम चले तो क्या दोष आता है, उसके लिए ये सब बातें बताई। यानी जीव जड़ नहीं हो सकता, ये बताए ना, प्रसंग प्राप्त जीव का, यानी इस तरह से अगर हम सोचते हैं तो क्या क्या बातें हो सकती है। तो इसलिए जीव जो कहे वो चेतन है, सचेतन है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जीव सचेतन है, क्योंकि सचेतना के बिना ज्ञान के अभाव का प्रसंग आता है। सचेतना यानी चेतना सहित अगर उसको जीव को नहीं मानेंगे तो ज्ञान का अभाव हो जाएगा। वह इस प्रकार से जीव ज्ञान का उपादान कारण नहीं है, क्योंकि चैतन्य से रहित उसके ज्ञान उपादान कारणता का विरोध है। ये कौन सा, जीव को जड़ मानकर फिर ये दलीलें हो रही है। जीव अगर जड़ हो तो वो ज्ञान का उपादान कारण नहीं है, क्योंकि वो चैतन्य से रहित है। जो चैतन्य से रहित है वो ज्ञान का उपादान कारण कैसे हो सकता है। अथवा अचेतन होते हुए भी उसको ज्ञान का उपादान कारण मानने में यदि कोई विरोध नहीं माना जाए तो आकाश भी उसका उपादान कारण हो जावे। क्या कहा, जीव को तो ज्ञान से रहित अचेतन माना और फिर भी वो ज्ञान का उपादान कारण मानते हो, तो आकाश भी हो जाएगा ज्ञान का उपादान कारण, सभी द्रव्य हो जाएंगे। क्योंकि अमूर्तत्व, सर्वव्यापकता और अचेतनता की अपेक्षा जीव से आकाश में कोई विशेषता नहीं है। नहीं है, क्योंकि ये तो जीव को जड़ मानकर ये बातें हो रही है, वो मत भूलना। यदि कहा जाए आकाश शब्द का उपादान कारण है, यही उसमें जीव से विशेषता है, सो वह भी नहीं हो सकता। यानी कहते वो तो शब्द का उपादान कारण है, उसमें डिफरेंस है, ऐसा कोई मानते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि शब्द उपादान कारणत्व रूप हेतु साध्य के ही समान असिद्ध है। जो हमको साध्य करना है उसके समान क्या, जीव को जड़ साबित करना चाहते हैं तो आकाश भी उसका शब्द का उपादान कारण है, वो तो पुद्गल का कार्य है। यानी जो हेतु दे रहे हैं वो भी गलत है। तो साध्य जैसा उनको, साध्य क्या करना था उनको, जीव जड़ है सिद्ध करना था, और उसके लिए जो हेतु दे रहे वो भी गलत है, और वो तो उनका साध्य भी गलत है। और उपादान कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा होने में विरोध है। इस कारण आकाशादिकों की अपेक्षा जीव के विशेषता स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा जीव ही ज्ञान का उपादान कारण कैसे हो सकता है। इस विशेष वह विशेषता भी चेतना को छोड़कर और दूसरी कौन सी हो सकती है। यानी जीव अन्य द्रव्यों से विशेष है, डिफरेंट है, क्योंकि वो ज्ञान का उपादान कारण है, और ये विशेषता क्या होनी चाहिए, चेतनता, चेतना, क्योंकि अन्य विशेषता में दोष पाए जाते हैं। अन्य कोई डिफरेंस आप उसके साथ लगा लो तो उसमें तो दोष आएगा। जिस प्रकार पुद्गल द्रव्य रूप का उपादान कारण है, उसी प्रकार जीव भी ज्ञान का उपादान कारण है, क्योंकि एकमात्र पुद्गल ही रूपी है ना, वो रूप का उपादान कारण बताए। ऐसे एकमात्र जीव ज्ञान उसका होता है, तो ज्ञान का उपादान कारण, ऐसा कहना भी उचित नहीं कह रहे, क्योंकि ऐसा मानने पर रूप के समान ज्ञान के यावत द्रव्य भावी होने का प्रसंग आवेगा। पर्याय भूत नील पीतादि रूप से व्यभिचार भी नहीं हो सकता। यावत द्रव्य भावी क्या है पता नहीं, जिस प्रकार पुद्गल द्रव्य रूप का उपादान है, उसी प्रकार जीव भी ज्ञान का उपादान, ऐसा भी कहना, क्योंकि ऐसा मान पर रूप के समान, नहीं यही तो, यानी जीव को जड़ मानकर उसको उपादान कारण मानते हो तो ज्ञान के भी यावत द्रव्य भावी होने का प्रसंग आवेगा। यानी वो ज्ञान और उसका वो कायम जैसे नित्य तादात में जो आप कह रहे हैं वही प्रसंग आवेगा। अरे उनको जो साध्य करना है, जड़ जीव जड़ है, वो तो सिद्ध ही नहीं होगा, क्योंकि पुद्गल तो है रूप का उपादान कारण, और जड़ होते हुए भी ज्ञान का उपादान कारण माने तो की बात है। कहाँ पर आने वाले, हाँ ठीक है, वह देखते हैं। वो आगे समझाएंगे। अब कहते पर्याय भूत नील पितादि रूप से व्यभिचार भी नहीं होता। देखो पुद्गल में पर्याय जो रूप है, और जो नील नीला पीला वगैरह उसके पर्याय हैं, तो उसके साथ भी कोई दोष नहीं आता है, क्योंकि रूपत्व के प्रति समान जातीय रूप विशेष के वहां अवस्थान के समान, ज्ञानत्व के प्रति समान जातीय ज्ञान विशेष के जीव में भी सर्वदा अवस्थान का प्रसंग आता है, अतएव जीव सचेतन है ऐसा स्वीकार करना चाहिए। यहाँ क्या कहना चाहते, देखो ये सब जो दलीलें हो रही, जीव को जड़ स्वीकार करके जो मानते हैं ज्ञान का उपादान कारण है, उसका निषेध कर रहे, यदि कहते हो कि पुद्गल रूप का उपादान कारण है, वैसे जीव को भी ज्ञान का उपादान कारण कहो, कौन से जड़ जीव को? तो अगर ऐसा आप सिद्ध करते हैं कि ज्ञान का उपादान कारण है, तो जब जब से द्रव्य है तब से ज्ञान है ऐसा मानना पड़ेगा, नित्य तादात्म्य संबंध सिद्ध हो जाएगा, ये कहना चाहते। और आपने तो उसको जड़ माना है। अब कहते कि जैसे पुद्गल में नीला पीला वगैरह उसकी पर्याय है, तो पर्याय भी तो है ना, केवल रूप नहीं उसके पर्याय भी है, पर वो पर्याय है वो तो उस रूप जैसी है कि कोई अलग है, जैसे वर्ण है तो नीला वर्ण पीला वर्ण वर्ण की तो पर्याय है, वो वर्ण के साथ समान है, वो वर्ण की वो विशेष अवस्थाएं हैं, तो उसका उपादान भी पुद्गल ही कहेंगे। यहाँ क्या कहते हैं, पर्यायभूत नील पीतादि रूप से व्यभिचार भी नहीं हो सकता, यानी पर्यायों में वो नीला पीला यदि डिफरेंस होने से उसमें कोई दोष नहीं होता, क्योंकि रूपत्व के प्रति, यानी नीला भी रूप ही है और पीला भी रूप ही है, हम वर्ण कहो या रूप कहो, समान जातीय रूप विशेष, रूप विशेष ने रूपों के जो विशेषताएं पर्याय, यानी देखो देखो हमारी भाषा में नीला वर्ण पीला वर्ण सफेद वर्ण काला वर्ण, वर्ण के प्रति तो कोई समानता है, वो वर्ण के ही विशेष है, उसको वर्ण विशेष कहो, यहाँ रूप विशेष कहा। तो कहते रूपत्व के प्रति समान जातीय रूप विशेष के वहाँ अवस्थान के समान, यानी जहाँ रूपत्व के प्रति उसका, यानी वो हम बताएं ना रूपत्व का वो उपादान कारण है, तो रूप के यानी वर्ण का उपादान कारण है, तो वर्ण के काला पीला नीला वगैरह जो है वो वर्ण विशेष है, तो उसके साथ कोई विरोध नहीं है। ऐसा ही अगर जीव को जड़ मानकर ज्ञानत्व के प्रति समान जातीय ज्ञान विशेष के जीव में भी सर्वदा अवस्थान का प्रसंग आता है, यानी ज्ञान को अगर उपादान कारण मानते हैं तो ज्ञान के जो भेद होंगे, जो कोई मति शुद्ध अवधि में जो कुछ भेद करना है, वो भी हमेशा जीव के साथ कोई ना कोई ज्ञान तो होगा ही ना, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ये ज्ञान वो ज्ञान ऐसा, तो उसके भी प्रति कोई विरोध नहीं आएगा, यानी हमेशा जीव के साथ कोई ना कोई ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा, यानी जीव को जड़ मानने पर ये बात सिद्ध नहीं हो सकती। अतएव जीव सचेतन ऐसा स्वीकार करना चाहिए, यानी ये सब जीव अचेतन है ऐसी दलील करके उसके क्या क्या दोष आते हैं उसकी चर्चा है। अब कहते अब ये जो ऊपर बात आई थी ना यावत द्रव्य भावी, उसकी बात यहाँ समझा रहे। जिन गुणों के परस्पर में कोई विरोध नहीं रहता वे उस द्रव्य के यावत द्रव्य भावी गुण कहलाते हैं, जिसे हम कहते ना एक गुण का दूसरे में गुण के साथ वो अविनाभावी संबंध ऐसा भी कहते हैं, यहाँ तो अलग बात बता रहे। जैसे पुद्गल द्रव्य के रूप रस गंध व स्पर्श, इस कारण चेतना के समान ज्ञान भी यावत द्रव्य भावी गुण है। ये गुण है दो बार छपा है, उसमें एक गुण है निकाल दो, क्योंकि चेतना के साथ ज्ञान का कोई विरोध नहीं है। और भी ज्ञान जीव का यावत द्रव्य भावी गुण है, क्योंकि चेतना की अपेक्षा उपयोग के प्रति उसकी एकता है, यानी चेतना उपयोग है और उसी के दो भेद है, ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग, जैसे ऊपर हमने रूप के विशेष देखे हुए हैं ऐसे उसी के विशेष है, और एक उपयोग का प्रमेय के भेद से द्वित्व को प्राप्त होकर भिन्न द्रव्य में रहना उचित नहीं है, क्योंकि वैसा होने में विरोध आता है। यावत द्रव्य भावी यानी जो द्रव्य के जो गुण है ना, जहाँ एक गुण है वहाँ उसका दूसरा भी गुण है, तो यावत द्रव्य भावी गुण कहते हैं, या जिसको हम अविनाभावी या नित्य तादात में ज्यादा बेटर है उसमें। यहाँ तो पुद्गल द्रव्य में रूप रस गंध स्पर्श वो गुणों का परस्पर रहने में कोई विरोध नहीं, इस अपेक्षा से उसको यावत द्रव्य भावी कहा। और चेतना और ज्ञान इकट्ठा है एक साथ है ये भी बताना चाहते हैं, या उसी का वो भेद है, चेतना उपयोग कहो तो उसी का ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग दो भेद होते हैं। अतएव ज्ञान दर्शन स्वभाव जीव है यह सिद्ध हुआ। उनको सिद्ध क्या करना है, जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी है। तथा सूर्य प्रभा के समान ज्ञान स्तोक द्रव्य गुण व पर्यायों से संबद्ध नहीं है, क्योंकि समस्त पदार्थ अनेकांतात्मक है, क्योंकि उसके बिना उनकी सत्ता घटित नहीं होती इत्यादि। अनुमान ज्ञान सब द्रव्य व पर्यायों में रहने वाला पाया जाता है। इस कारण संपूर्ण द्रव्य एवं पर्यायों का विषय करने वाले ज्ञान दर्शन स्वरूप जीव है ऐसा सिद्ध होता है। सर्वज्ञता सिद्ध करनी है तो कहते कि जैसे सूर्य प्रकाश सभी सभी ओर व्याप्त नहीं होता है, क्या कहा, सूर्य प्रभा के समान ज्ञान स्तोक यानी अल्प अल्प द्रव्य गुण पर्यायों से संबद्ध नहीं है, यानी क्या है तो समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को जानने वाला है। ज्ञान क्या है, समस्त ज्ञान का अर्थ कार्य क्या है, जानना किसको, जो कुछ है वो सबको, क्योंकि समस्त पदार्थ अनेकांतात्मक है, क्योंकि उसके बिना उनकी सत्ता घटित नहीं है। पदार्थ अनेकांत अनेक वस्तु धर्मात्मक होती है, उसके बिना उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती और ऐसा अनुमान ज्ञान सब द्रव्य पर्याय में रहने वाला पाया जाता है। इस कारण संपूर्ण द्रव्य एवं पर्यायों को विषय करने वाले ज्ञान दर्शन स्वरूप जीव है ऐसा सिद्ध होता है। शोभा कुछ कहा, पता नहीं लगता कुछ बोला था। हाँ हाँ अब कहते पुनः कषाय ज्ञान की विरोधी है, यानी जो सर्वज्ञ है तो पूर्ण भीतरागी है, कषाय और ज्ञान एक ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कषायों की वृद्धि और हानि से क्रमशः ज्ञान की हानि और वृद्धि पाई जाती है। ऐसा लगाना कषायों की वृद्धि से ज्ञान की हानि और कषायों की हानि से ज्ञान की वृद्धि, इसलिए क्रमशः शब्द लगाया उन्होंने। कषाय जीव के गुण नहीं है, क्या कहा, पर्याय में है पर वो कोई गुण नहीं उनके, क्योंकि यावत द्रव्यभावी ज्ञान के साथ उनका विरोध अन्यथा घटित नहीं होता। यदि वो गुण होता तो ज्ञान के साथ वो यावत द्रव्यभावी होता, जैसे ज्ञान गुण है तो वहां तो श्रद्धा भी है, चारित्र भी है, सुख भी है, ऐसा कषाय उसका गुण नहीं है। प्रमाद व असंयम भी जीव गुण नहीं है, क्योंकि वे कषायों के कार्य है। अज्ञान भी जीव का गुण नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान का प्रतिपक्षी है। देखो ज्ञान वो जीव का गुण है, यावत द्रव्य भावी है, ना कषाय उसका गुण है, ना ही प्रमाद उसका गुण है, ना ही असंयम उसका गुण है, ना ही अज्ञान जीव का गुण है। मिथ्यात्व भी जीव का गुण नहीं है, वो आता है ना मिथ्यात्व असंयम कषाय है, ये सब प्रमाद कषाय, वो कोई जीव के गुण नहीं है, क्योंकि वह सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी एवं अज्ञान का कार्य है। इस कारण ज्ञान दर्शन संयम सम्यक्त्व क्षमा मृदुता आर्जव संतोष और विराग आदि स्वभाव जीव है यह सिद्ध हुआ। इन्हें जीव का स्वभाव ही इस रूप है। कर्म नित्य नहीं है, क्योंकि अन्यथा जन्म जरा मरण शरीर व इंद्रियादि रूप कर्म कार्यों की अनित्यता बन नहीं सकती। जो नित्य है उसका कार्य भी नित्य होना चाहिए, परंतु इसमें तो कितनी अनित्यता देखने में आती है। यदि कहा जाए कि जन्म जरादिक अकारण है, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि कारण के बिना कार्यों की उत्पत्ति का विरोध है। यदि ज्ञान दर्शनादिकों को उनका कारण माने तो वह भी संभव नहीं है, क्योंकि अन्यथा कर्मजनित कषायों के साथ उनका विरोध घटित नहीं होता। क्या कहते, ज्ञान का और कषायों का विरोध है ये न मालूम है, और कषाय कर्मजनित होती है। यानी ये जो जन्म जरा वगैरह वो तो ज्ञान के कार्य नहीं हो सकते, ये कहना चाहते हैं। और जो कारण के साथ अविरोधी है उनका उक्त कारण के कार्यों के साथ विरोध उचित नहीं है, क्योंकि कारण के विरोध के द्वारा ही सर्वत्र कार्यों में विरोध पाया जाता है। अतएव मिथ्यात्व असंयम और कषाय कर्मों के कारण हैं, यह सिद्ध हुआ। सम्यक्त्व संयम और कषायों का अभाव कर्मक्षय से कारण है, क्योंकि ये मिथ्यात्वादिकों के प्रतिपक्षी हैं। और कारण आदि कार्य को उत्पन्न करते ही नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता। जो कारण है तो कार्य को उत्पन्न करेंगे। अतएव किसी काल में किसी भी जीव में कारण कलाप सामग्री निश्चय से होना चाहिए, और इसीलिए किसी भी जीव के पूर्ण स्वभाव की प्राप्ति होना चाहिए। देखो क्या कहना चाहते हैं, यहाँ ये बातें सिद्ध कर रहे हैं। पहले ज्ञान का और कषाय का विरोध बताया, जहाँ कषाय की वृद्धि है वहाँ ज्ञान की हानि है, कषाय की हानि है तो ज्ञान की वृद्धि है। तो ऐसा भी होता होगा ना कि ज्ञान की हानि होते होते बिल्कुल, सॉरी, कषाय की हानि होते होते बिल्कुल कषाय से रहित हो गया जी, तो ज्ञान की भी वृद्धि होते होते पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हुआ, ये संभव है कि नहीं, ये बता रहे हैं अपन। यहाँ उन्होंने क्या क्या बातें सिद्ध किए, देखो, कषाय जीव का गुण नहीं है, ऊपर से पढ़ रहे थे, प्रमाद असंयम भी जीव का गुण नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, मिथ्यात्व तो भी नहीं, वगैरह वगैरह। उसके प्रतिपक्षी वो तो जीव के गुण है, कौन से, ज्ञान, दर्शन, संयम, सम्यक्त्व वगैरह वगैरह। उसके बिना उसके बाद उन्होंने ये भी बात बताई, अभी कर्म पर घटित कर रहे हैं। तो ये जो जन्म जरा मरण शरीर वगैरह जो है वो कर्म से उत्पन्न होते हैं, कार्य के भी कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। उसके बाद ये भी सिद्ध किया कि मिथ्यात्व असंयम कषाय कर्मों के कारण है, यानी कर्मों के कारण से है, इस तरह से वो कर्मों के कारण ऐसा नहीं है, उनके कारण वो कर्म के निमित्त से वे होते हैं, कर्म उनके कारण है। और सम्यक्त्व संयम कषायों का अभाव कर्म क्षय के कारण है, या ऐसा भी लेते हैं मिथ्यात्व संयम कषाय से कर्म बनते हैं, उल्टा भी ऐसा भी ले सकते हैं, क्योंकि कर्मों के उदय से वो होते हैं और उसके कारण कर्म बनते हैं। और सम्यक्त्व संयम और कषायों का अभाव कर्म क्षय के कारण है, उसके द्वारा कर्म का क्षय होता है, क्योंकि मिथ्यात्विकाओं के प्रतिपक्षी हैं। इससे क्या सिद्ध होता है, जिसको सम्यक्त्व है, संयम है और कषायों का अभाव है, वो कर्म का क्षय करते करते कर्म को नाश कर दिया, यानी वो पूरा निरावरण हो गया, ये भी सिद्ध होता है ना। इसलिए वो पूर्ण स्वभाव की प्राप्ति होना चाहिए, पेज नंबर 118। ये सब क्या है, न्याय की भाषा में समझाने की कोशिश की, क्योंकि स्वभाव वृद्धि का तारतम्य पाया जाता है। स्वभाव वृद्धि का तारतम्य नहीं, हीनाधिकता पाई जाती है, क्योंकि हमने देखा ना यहाँ तो कषायों की पूर्ण हानि हो गई, अज्ञान पूरा मिट गया, तो वहां स्वभाव की परिपूर्णता यानी वृद्धि होते होते पूर्णता को पहुंचेगा। जैसे इसके लिए दृष्टांत देते हैं, खान के कनक पाषाण में, कनक यानी सुवर्ण पाषाण, जो ओर होते हैं ना, खदान में कैसे मिलते हैं सोना, इन द फॉर्म ऑफ पत्थर कुछ होते हैं, उसको सुवर्ण पाषाण कहते हैं। कनक पाषाण में स्थित सुवर्ण अथवा शुक्ल पक्ष के चंद्रमंडल के क्या स्वभाव वृद्धि का तारतम्य, यानी जो वृद्धि का तारतम्य, हीनाधिकता वृद्धि जो पाई जाती है, कनक पाषाण में जो सुवर्ण है वो तपाने पर भी वो शुद्ध शुद्ध होता चला जाता है, या शुक्ल पक्ष के जो चंद्रमंडल है वो भी बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंच जाता है। ये स्वभाव का तारतम्य बताए। कषाय का भी पूर्ण विनाश किसी भी जीव में होता है, यानी कषाय भी कम होते होते पूर्ण उसका विनाश किसी जीव में पाया जाता है, क्योंकि उसकी हानि का तारतम्य पाया जाता है। वहां स्वभाव वृद्धि का तारतम्य बताया, यहाँ हानि का भी तारतम्य पाया जाता है। जैसे खान के सुवर्ण में हीयमान मल कलंक का अथवा दुर्बल मान कलंक का तारतम्य पाया जाता है, यानी खदान में जो सुवर्ण है पाषाण उसमें मल घटता चला जाता है तो उसको कहेंगे हीयमान, ने घटता हुआ मल कलंक, अथवा दुर्बल मान कलंक, यानी जिसे मान भी हीन होते होते शंका। कर्म पूर्ण ज्ञान का आवरण करते हैं, क्योंकि आवरण का तारतम्य पाया जाता है। जैसे चंद्रमंडल को राहु मंडल, ऐसा भी यहाँ कहा जा सकता है, ये उन्होंने प्रश्न पूछा। समाधान, ऐसा अनुमान योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर यावत द्रव्य भावी ज्ञान दर्शन के अभाव से जीव द्रव्य के भी अभाव होने का प्रसंग आता है। यानी क्या कहना चाहते हैं, ऐसा मानो तो ये शंकाकार क्या पूछ रहे हैं, जैसे आवरण है ना, ये वृद्धि हानि बताई, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञान के ऊपर पूर्ण आवरण आ जाए, ऐसे पूछ रहे हैं। जैसे राहु मंडल को, चंद्रमंडल को राहु मंडल, जैसे हमने देखा था वो ग्रहण होता है ना, पूरे चंद्र को मिटा देते हैं, देखो ये दिखता ही नहीं वो, ऐसा ज्ञान पूर्ण आवृत हो जाए ऐसा हो सकता है कि, ये प्रश्न है उनका। तो कहते ऐसा अनुमान योग्य नहीं, यानी अनुमान ही लगा रहे हैं, तर्क लगा रहे हैं, तो ऐसा ये ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर यावत द्रव्यभावी ज्ञान दर्शन के अभाव से जीव द्रव्य के भी अभाव का प्रसंग आता है। ये जो ज्ञान दर्शन कैसे यावत द्रव्य, वो तो नित्य तादात्म्य है और उसका वो कार्य भी चलेगा हमेशा ही कुछ न कुछ जानने का। जीव जड़ हो जाए ज्ञान से रहित हो जाए ऐसा कभी नहीं बनेगा, अगर वो ऐसा हो जाए तो जीव का अभाव हो जाएगा। जीव अगर ज्ञान से रहित हो जाए तो जीव ही नहीं रहेगा, और द्रव्य के अभाव होता नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर तीन लोक के अभाव का प्रसंग आता है। क्यों, तीन लोक में क्या है, छद्रव्य तो है, और ये द्रव्य का अभाव अगर मानेंगे तो एक का क्या, सबका ही अभाव हो जाएगा, तो तीन लोक का अभाव हो जाएगा, इसलिए यह बात घटित नहीं होती। अतएव केवल ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञानी, केवल दर्शनावरण के क्षय से केवल दर्शनी, मोहनीय के क्षय से वीतराग, ऊपर क्या केवल नानावरक खैण, अंतराय के क्षय से विघ्नों से रहित अनंत बल से संयुक्त तथा अघातिया कर्मों को किंचित दग्ध करने वाला जीव कहीं पर भी है, यह सिद्ध है। क्या कहा, ये केवल घाती कर्म ही नष्ट नहीं हो गए, अघाती भी कुछ मात्रा में तो वो भी किंचित दग्ध हो गए, और आवरण के क्षीण हो जाने पर आत्मा परिमित को ही जानता है, यह हो नहीं सकता। क्या कहा, आवरण के क्षीण होने पर, यानी आवरण नष्ट हो गया, क्षीण यानी वो दुबला, ऐसा नहीं, आवरण नष्ट होने पर आत्मा परिमित यानी मर्यादित को ही जानता है। देखो आवरण था तो हीना दिखता हो रही थी, कम जानता है थोड़ा ज्यादा जानता है, अभी बिल्कुल आवरण नहीं रहा तो जितना स्वभाव है पूर्ण विकसित हो जाता है, तो आत्मा परिमित को ही जानता है, यह हो नहीं सकता, क्योंकि प्रतिबंध से रहित यानी कोई उसको अटकाव नहीं है, और समस्त पदार्थों के जानने रूप स्वभाव से संयुक्त, स्वभाव ही कैसा है, समस्त पदार्थों को जानने का स्वभाव ही है, और वहां जो कोई रुकावट का कारण जिसको हम निमित्त रूप से कहते थे कर्म, वो भी अभी कुछ नहीं रहा, प्रतिबंध कोई नहीं रहा, और स्वभाव तो है ही है, स्वभाव के नया उत्पन्न नहीं हुआ है, कर्मों के जाने से स्वभाव नहीं उत्पन्न हुआ है, स्वभाव तो अनादि का है वैसा ही है। तो कहते प्रतिबंध से रहित और समस्त पदार्थों के जानने रूप स्वभाव से संयुक्त, स्वभाव कैसा है जानना, तो जानना कितने को जानेगा, नो लिमिट, किसको जानेगा, वर्तमान को क्या भूत भविष्य सबको, ने तीनों कालों को जानेगा, यानी कोई उसमें मर्यादा नहीं, उसके परिमित पदार्थों के जानने का विरोध है। यानी ऐसा जो केवल ज्ञान हो जाएगा, प्रतिबंध पूरा मिट गया है और स्वभाव तो समस्त को जानने का है, और अभी वो कहते हैं वो सर्वज्ञ नहीं है, तो ये बातें नहीं हो सकती। यहाँ उपयोगी श्लोक, ये 26 नंबर का उप, ज्ञो ज्ञेय कथम अज्ञ स्यात् असति प्रतिबंधरी, दाह्ये निर्दाहको न स्यात् असति प्रतिबंधरी। ज्ञान स्वभाव आत्मा प्रतिबंधक के अभाव होने पर स्यात् असति प्रतिबंधरी, यानी प्रतिबंधरी का अभाव होने पर ज्ञेय के विषय में ज्ञान रहित कैसे हो सकता है। क्या कहते हैं, आत्मा ही कैसा है, ज्ञान स्वभावी, और ज्ञान स्वभावी ने परिपूर्ण स्वभाव ही परिपूर्ण जानने का है, और प्रतिबंधक का भी अभाव हुआ, तभी ज्ञान के ज्ञेय के विषय में वो ज्ञान रहित कैसे हो सकता है, वो सब कुछ जानेगा ही जानेगा, अर्थात नहीं हो सकता। क्या अग्नि प्रतिबंध के अभाव में दाह्य पदार्थ का दाहक नहीं होता है, यानी अग्नि है वो प्रतिबंध के अभाव में दाह्य पदार्थ का दाहक नहीं होता, होता ही है। अभी हमारे जंगलों में जो आग कितने दिनों से फैली है, कितने जगह महीनों महीनों से वो आग सुलझती रहती है, तो वहाँ कोई प्रतिबंधक का अभाव है, तो जलने योग्य तो जलते ही रहेंगे। ध्यान में आते हैं ना, ये कह रहे हैं ये, तो फिर भी ये दृष्टांत एक देश होता है, परंतु यहाँ तो ज्ञान तो स्वभाव ही है, जानना ही उसका स्वभाव है, और अभी कोई प्रतिबंध नहीं रहा, कोई आवरण नहीं रहा। यह भी इस प्रकार से स्वरूप से संयुक्त वर्धमान भट्टारक ही हो सकते हैं, क्योंकि उनके वचन युक्ति व शास्त्र से अविरुद्ध, उनके वचन युक्ति व शास्त्र से अविरुद्ध है। यानी यहाँ वर्धमान भगवान सर्वज्ञ है, ये बस का की सिद्धि हो रही है, सर्वज्ञ की सिद्धि हो रही है। और ऐसे सर्वज्ञ यानी वर्धमान भट्टारक हो सकते, क्योंकि उनके वचन, भगवान के जो वचन है, वो युक्ति से और शास्त्र से अविरुद्ध है। उसके लिए गाथाएं बता रहे दो, 27 और 28, एक एक पढ़ेंगे। खीणे दंसन मोहे चरित्त मोहे तहे वघायति ये सम्मत्त वीर्यणाने कैये ते होंति जीवाणम्। दर्शन मोह, चारित्र मोह तथा तीन अन्य घातिया कर्मों के क्षीण हो जाने पर, यानी क्षय होने पर। क्या कहना चाहते हैं, दर्शन मोह का क्षय हुआ, कब हुआ, क्षयिक समय दृष्टि हुआ, चौथे से सातवें तक कहीं पर भी हुआ, क्योंकि जो क्षपक श्रेणी चढ़ता है वो तो क्षयिक समय दृष्टि होना चाहिए, तो जिसने पहले ही क्षयिक समय तो प्राप्त किया है, अब चारित्र मोह को भी क्षीण यानी क्षय करने जा रहा है, यानी क्षपक श्रेणी चढ़ा हुआ, तो उसने 12वें गुण स्थान में आया, तब 10वें के अंत में मोह का क्षय हो गया, पूर्ण मिट गया वो। अब तीन घातियां शेष रहे, कौन से तीन, हाँ, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतर। अब वो तीन घातियां भी क्षीण हो गए, क्षय हो गया, 12वें के अंत तक थे उसका भी क्षय हो गया, अभी 13वां गुणस्थान हम कहेंगे प्राप्त हुआ। तो कहते हो ने जीवों के, अभी ये सब उनके जो ये प्रतिबंधक हट गए तो क्या क्या उत्पन्न हुआ, सम्यक्त्व, वीर्य और ज्ञान रूप वेक्षायिक भाव होते हैं। यानी ये जो यानी चारों घातीय कर्म आ गए ना, उसमें दर्शन मोह, चारित्र मोह, अन्य तीन घातियां, अभी ज्ञानावरण के पूर्ण क्षय हुआ तो क्षायिक ज्ञान हुआ, अनंत ज्ञान जिसको कमी है, दर्शनावरण पूरा गेला तो अनंत दर्शन कहो, केवल दर्शन कहो, जिसको नव केवल लब्धिया भी कहते हैं। दर्शन मोह का क्षय हो गया सम्यक्त्व, चारित्र मोह का क्षय हो गया चारित्र, क्षायिक चारित्र भी, और ये पांच वीर्यादि पांच होते हैं, ये सब क्षायिक भाव होते हैं। 28 नंबर, उपन्नम्यनन्ते नठम्य छादुमत्थियेनाणे देविन्द दानविन्दा करेन्ति महिमं जिनवरस। अनंत ज्ञान के उत्पन्न होने, उत्पन्नमी अनंते, और छाद्मस्थिक ज्ञान के नष्ट हो जाने पर। छाद्मस्थिक यानी हमारा आपका छद्मस्थ ज्ञान है, मतिशुद्ध ज्ञान जो छद्मस्थ क्षोभम ज्ञान, वो नष्ट हुआ। फिर से देखो, अनंत ज्ञान के उत्पन्न होने और छाद्मस्थिक ज्ञान के नष्ट होने पर देविंद दानविंद, दानव किसको कहेंगे, वो असुरों वगैरह को, देवेंद्र एवं दानवेंद्र, दानवेंद्र उसको दानव कहते ना, दानव यानी वो राक्षस विषय, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो भवनवासी वगैरह जो है ना, भवनत्रिक, उसको दानवेंद्र कहेंगे, या असुर के भी, असुर असुर को भी कहते हैं। उनके जो इंद्र है वो जिनेंद्र देव की महिमा करते हैं। इस प्रकार के भाव से युक्त वर्धमान भट्टारक ने तीर्थ की उत्पत्ति की, ग्रंथ की प्रमाणता की बात हो रही है, और वर्धमान भट्टारक ने, वर्धमान स्वामी जो है हमारे महावीर भगवान, उन्होंने ये तीर्थ मैंने उपदेश दिया था, उसकी उत्पत्ति की थी, ये बात यहाँ हो रही है। अब द्रव्य क्षेत्र और भाव की प्ररूपणाओं के संस्कारार्थ काल प्ररूपणा की, द्रव्य से बताए महावीर भगवान के शरीर से शुरुआत की थी, क्षेत्र में समोसरण की बात हो गई है, भाव में अभी ये सब भाव से ही बात बता रहे हैं। ये भाव की बात बताई ना कि जो वो तो कषाय का और ज्ञान का विरोध है, और वो कषाय कोई गुण का कार्य नहीं वगैरह वगैरह उन्होंने बता दिया सब, ये भाव में बात आ गई। अब काल की प्ररूपणा करते हैं, वह इस प्रकार है। अवसर्पण और उत्सर्पण के भेद से काल दो प्रकार का है। आपने मालूम है ना, यहाँ तो भरत क्षेत्र में ये जो परिवर्तन होता है कालों का, जैसे हम पहला उत्तम भूमि थी यहाँ, फिर मध्यम भूमि, फिर जघन्य भूमि, फिर चौथा काल आया यहाँ पर, फिर पांचवा, छठा, फिर उल्टा हो जाता है। तो पहले से छठे तक वो अवसर्पिणी कहते हैं, और उल्टा वो उत्सर्पिणी बढ़ता हुआ। तो अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के भेद से काल दो प्रकार का। जिस काल में बल आयु वो उच्छेद का, उच्छेद यानी हाइट, उत्सर्पण अर्थात वृद्धि होती है, वह उत्सर्पिणी काल है। जिस काल में उनकी हानि होती है वह अवसर्पिणी काल है, यानी बल भी आयु भी और उसकी हाइट भी वो कम हो जाती है। उनमें प्रत्येक सुखमा सुखमादि के भेद से छह प्रकार है। प्रत्येक यानी उत्सर्पिणी भी छह प्रकार का है और अवसर्पिणी भी छह प्रकार के है। उनमें इस भरत क्षेत्र के अवसर्पिणी के चतुर्थ दुखमा सुखमा काल में, देखो पहला काल का नाम है सुखमा सुखमा, दूसरा होगा सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा, और चौथा दुखमा सुखमा, ये बात हो रही है। अवसर्पिणी का चौथा काल, उस काल में 9 दिन व 6 मासों से अधिक 23 वर्षों के शेष रहने पर, 33 अभी ब्रैकेट मिल गया, 33 वर्ष 6 मास और 9 दिन शेष रहने पर तीर्थ की उत्पत्ति हुई। तीर्थ ने उपदेश शुरुआत हुआ। कहा भी है नहीं नहीं केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ कि उनके तो दिव्य ध्वनि खिरनी चाहिए ना, तीर्थ की उत्पत्ति हुई, श्रावण वदी एकम लेना चाहिए ना। क्योंकि वैशाख शुद्ध दशमी को उनको केवल ज्ञान हुआ था,
और ये वाणी,
हाँ वाणी तो बाद में खिरी ना। हाँ देखो यहाँ लिखा है 25 में, इमिसेव सप्पिनीये चौथ कालस्य पश्चिमे भाये 34 वास शेषे किंचि विशेषूण कालम्मे। इस अवसर्पिणी के चतुर्थ काल के अंतिम भाग में कुछ कम 34 वर्ष है, इसलिए वो तो बताया ना एग्जैक्ट कितना है, वो 33 वर्ष 6 मास और 9 दिन, उसको कुछ कम 34 कहा। वर्ष प्रमाण काल के शेष रहने पर धर्म तीर्थ की उत्पत्ति हुई है, वह इस प्रकार से वो भी समझा रहे। 15 दिन और 8 मास अधिक 75 वर्ष चतुर्थ काल में शेष रहने पर, 75 वर्ष 8 मास और 15 दिन, पुष्पोत्तर विमान से आषाढ़ शुक्ल षष्ठी के दिन 72 वर्ष प्रमाण आयु से युक्त, जब आए तभी 72 वर्ष की आयु लेके आए थे, और जब गर्भ में आए तब चौथे काल में 75 वर्ष शेष थे, 72 वर्ष प्रमाण आयु से युक्त और 3 ज्ञान के धारक महावीर भगवान गर्भ में अवतीर्ण हुए, इसमें 30 वर्ष कुमार काल, 12 वर्ष उनका छद्मस्थ काल, केवली काल भी 30 वर्ष, इस प्रकार इन 3 कालों का योग 72 वर्ष होता है। इनको 75 वर्षों में से कम करने पर वर्धमान जिनेंद्र के मुक्त होने पर जो शेष चतुर्थ काल रहता है उसका प्रमाण होता है। 75 वर्षों में से ये कम कर दो इतने, इसमें 66 दिन कम केवली काल के जोड़ने पर, 9 दिन और 6 मास अधिक 33 वर्ष चतुर्थ काल में शेष रहते हैं। समझ में आती है बात, क्योंकि उन्होंने जब से उपदेश दिया तब से गिनना है। शंकाकार पूछते हैं केवली काल में 66 दिन कम किस लिए किए जाते हैं, उसका समाधान क्योंकि केवल ज्ञान के उत्पन्न होने पर भी उनमें तीर्थ की उत्पत्ति नहीं हुई, तीर्थकों ने तीर्थ की उत्पत्ति नहीं हुई। शंकाकार पूछते हैं इन दिनों में दिव्य ध्वनि की प्रवृत्ति किस लिए नहीं हुई, उसका समाधान गणधर का अभाव होने से उक्त दिनों में दिव्य ध्वनि की प्रवृत्ति नहीं हुई। शंका पूछते हैं सौधर्म इंद्र ने उसी क्षण में ही गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया। प्रश्न आता है ना, बाद में उसी ने जाके लाया तो पहले क्यों नहीं लाया। नहीं किया क्योंकि काल लब्धि के बिना असहाय सौधर्म इंद्र के उनको उपस्थित करने की शक्ति का उस समय अभाव था। हमें ऐसे प्रश्न होते, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। अरे जिसकी जैसी काल लब्धि जो होनहार है वैसा ही कार्य होगा। शंका अपने पाद मूल में महाव्रत को स्वीकार करने वाले को छोड़ अन्य का उद्देश कर दिव्य ध्वनि क्यों नहीं प्रवृत्त होती। मैं हमेशा ये बात बताती हूँ ना, ये यहाँ से निकला है, 121 पेज पर है, ये मैं बताती हूँ क्या है यहाँ पर। शंकाकार क्या पूछता है अपने पादमूल में यानी तीर्थंकर के पादमूल में महाव्रत को स्वीकार करने वाले को छोड़कर अन्य का उद्देश्य कर अन्य के निमित्त से दिव्य ध्वनि क्यों नहीं प्रवृत्त होती, यानी ये नियम बताए ना। शंका मैंने हमेशा बताया उनके सामने भगवान के सामने जो महाव्रत को स्वीकार करते हैं उनके पाद मूल में उन्हीं के निमित्त से दिव्य ध्वनि खिलेगी, यानी वही गणधर बनेंगे। क्यों अन्य का उद्देश्य कर दिव्य ध्वनि क्यों नहीं प्रवृत्त होती, ये उनका प्रश्न है। नहीं होती क्योंकि ऐसा स्वभाव है और स्वभाव दूसरों के प्रश्न के योग्य नहीं होता, क्योंकि ऐसा होने पर अव्यवस्था होती है। अश्विन के लिए वर रहा है बता रहे। उनके पादमूल में जो महाव्रत को ग्रहण करते स्वीकार करते हैं उनके निमित्त से दिव्य ध्वनि खिलती है, उनके उद्देश्य है उनके निमित्त से। इस कारण चतुर्थ काल में कुछ कम 34 वर्ष शेष रहने पर तीर्थ की उत्पत्ति हुई यह सिद्ध है। अन्य कितने ही आचार्य 5 दिन और 8 मासों से कम 72 वर्ष प्रमाण वर्धमान जिनेन्द्र की आयु बतलाते हैं। अच्छा, इन्हें 72 वर्ष नहीं कहते हुए 71 वर्ष 3 मास और 25 दिन। उनके अभिप्राय अनुसार गर्भस्थ कुमार छद्मस्थ और केवल ज्ञान के कालों की प्ररूपणा करते हैं, यानी जो उनके मत के अनुसार जो काल बता रहे वह इस प्रकार है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन कुंडलपुर नगर के अधिपति नाथवंशी सिद्धार्थ नरेंद्र की त्रिशला देवी के गर्भ में आकर मैंने सिद्धार्थ उनके पिता थे ना, और त्रिशला माता गर्भ में आकर वहां 8 दिन अधिक 9 मास रहकर 9 मास और 8 दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की रात्रि में उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में गर्भ से बाहर आए। यहाँ आषाढ़ शुक्ल षष्ठी को आदि करके पूर्णिमा तक 10 दिन होते हैं। पुनः श्रावण मास को आदि करके 8 मास गर्भ में बिताकर चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को उत्पन्न हुए थे, अतः 28 दिन चैत्र मास में प्राप्त होते हैं। इनको पूर्वोक्त 10 दिनों में मिला देने पर 8 दिन सहित 1 मास प्राप्त होता है। उसे 8 मासों में मिला देने पर 8 दिन अधिक 9 मास गर्भस्थ काल होता है। उसकी संदृष्टि यानी वो ऐसा लिखना 9 माह 8 दिन, यह उपयुक्त गाथा है। ऊपर एक एक गाथा पढ़ेंगे 26 27 एक साथ। सुरमहि दोच्युद कप्पे भोगम दिव्वाणु भागम अनुभूदो फुफुतरणामादो विमान दोजोचुदो संतो बाहत्तरिवासाणिय थोव विहूणानि लद्ध परमाहु आषाण जोन्न पक्खे छठी ए जोणि मुवयादो। नीचे अर्थ है उसका। वर्धमान भगवान अच्युत कल्प में देवों से पूजित हो दिव्य प्रभाव से संयुक्त भोगों का अनुभव कर पुनः पुष्पोत्तर नामक विमान से च्युत होकर कुछ कम 72 वर्ष प्रमाण उत्कृष्ट आयु को प्राप्त करते हुए आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन योनि को प्राप्त हुए अर्थात गर्भ में आए। अभी 28-29 कुंडपुर वरिसर सिद्धत्थ खत्तियसनाह कुले तिसिलाए देवीये देवी सदसेवमानाए अच्छित्तानव मासे अठय दिवसे चैतसिय पक्खे तेरसिये रत्तिये जादुत्तर फग्गुणी एदु। तत्पश्चात कुंडपुर रूप उत्तमपुर के नरपति कुंडपुर पुरवरिस्स उत्कृष्ट वरिसर सिद्धतख सिद्धार्थ क्षत्रिय के नाथ कुल में सैकड़ों देवियों से सेव्यमान त्रिशला देवी के गर्भ में 9 मास और 8 दिन रहकर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी की रात्रि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न हुए। इस प्रकार गर्भस्थित काल की प्ररूपणा की है। 123 पृष्ठ पर आते हैं। अब कुमार काल को कहते हैं। चैत्र मास के 2 दिन त्रयोदशी को जन्मे ना। यहाँ तो हमारे मराठी गुजराती कैलेंडर नहीं चलेगा क्योंकि उनके तो पूर्णमासी को वो महीना खलास समाप्त हो जाता है। चैत्र पूर्णिमा के बाद उनका वैशाख शुक्ल वदी चालू हो जाता है। हम चैत्रवदी कहेंगे, वो वैशाखवदी कहेंगे। वो 15 दिन में डिफरेंस होता है हमारा उनका, इसलिए कहते दो दिन चैत्र मास के, दो दिन पूर्णिमा तक यानी 14 और पूर्णिमा। वैशाख को आदि लेकर 28 वर्ष, पुनः वैशाख को आदि करके कार्तिक तक 7 मास को कुमार स्वरूप से बिताकर पश्चात मगसिर कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन दीक्षार्थ निकले थे, मगसिर कृष्ण दशमी को। अतः इस काल का प्रमाण 12 दिन और 7 मास अधिक 28 वर्ष मात्र होता है। जिसको हम 30 वर्ष कहते हैं ना, उनको यह इतने घटित किए, यह उपयुक्त गाथ। मनुवत्तन सुह मौलम देवकयम से विऊण वासाइम 28 सत्तय मासे दिवसे यारसयम आहिनि बोहिय बुद्धो छठेन यमग्गसी स बहुलेदु दशमी ये निखंतो सुरमहिदो निखमण पुज्जो। वर्धमान स्वामी 28 वर्ष 7 मास और 12 दिन देवकृत श्रेष्ठ मानुषिक सुख का सेवन करके आभिनिबोधि ज्ञान से प्रबुद्ध होते हुए षष्ठोपवास के साथ मगसिर कृष्ण दशमी के दिन गृह त्याग करके सुरकृत महिमा का अनुभव कर तप कल्याण द्वारा पूज्य हुए। सुरकृत महिमा ने उसको दीक्षा कल्याणक मनाते हैं ना वहां पर, इस प्रकार कुमार काल की प्ररूपणा की है। अब छद्मस्थ काल कहते हैं, वह इस प्रकार है। मगसिर कृष्ण पक्ष की एकादशी को आदि करके मगसर की पूर्णिमा तक 20 दिन, पुनः पौष मास को आदि करके 12 वर्ष, पुनः उसी मास को आदि करके 4 मास और वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तक वैशाख के 25 दिनों को छद्मस्थ रूप से बिताकर वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन रुजुकुला नदी के तीर पर जुरुम्बिका ग्राम के बाहर षष्ठोपवास के साथ, वो प हो गया षष्ठ करना, शिलापट्ट पर आतापन योग के साथ अपराह्न काल में, अपराह्न दोपहर में पाद परिमित छाया के होने पर केवल ज्ञान उत्पन्न किया, यानी उनकी छाया बस उनके पैर पर पड़े ऐसे नहीं दोपहर में। इसलिए इस काल का प्रमाण 15 दिन और 5 मास अधिक 12 वर्ष मात्र होता है, यहाँ उपयुक्त गाथाएं। एक्चुअली उनको छद्मस्थ काल कैसे कहते हैं, वैसे छद्मस्थ तो सारे ही होते हैं, वो तो मुनि अवस्था का काल कहेंगे ना। हाँ, अभी 32 और 34 पढ़ेंगे, 32 33 34 तीनों। गमय छदुमत्थत्तम बारसवासाणि पंचमासेय पन्नरसाणि दिनानि तिरयण सिद्धो महावीरो उजुकूल नदी तीरे जम्भीय गामे बहिम शिलावट्टे छठेनादावेन्तो अवरण्ये पाय छायाये वैसाहज्जोन्न पक्खे दशमी खवगसेडी मारूढो हंतून घाय कम्मम केवल नाणम समावन्नो। रत्नत्रय से विशुद्ध महावीर भगवान ने 12 वर्ष 5 मास और 15 दिन छद्मस्थ अवस्था में बिताकर रुजुकुला नदी के तीर पर जुरुम्बिका ग्राम में बाहर शिलापट्ट पर षष्ठोपवास के साथ आतापन योग युक्त होते हुए अपराह्न काल में पाद परिमित छाया के होने पर वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर घातिया कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया, इस प्रकार छद्मस्थ काल की प्ररूपणा की। अब केवल काल कहते हुए इस प्रकार वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को आदि करके पूर्णिमा तक 5 दिन, पुनः ज्येष्ठ से लेकर 29 वर्ष उसी मास को आदि करके आसोज तक 5 मास आसजन आश्वे। पुनः कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के 14 दिनों को भी केवल ज्ञान के साथ यहाँ बिताकर मुक्ति को प्राप्त हुए। चूंकि अमावस्या के दिन सब देवेंद्रों ने परिनिर्वाण पूजा की थी, अतः उस दिन को भी इसी में मिलाने पर 15 दिन होते हैं। इस कारण इसका प्रमाण 20 दिन और 5 मास अधिक 29 वर्ष मात्र होता है। यहाँ उपयुक्त गाथाएं 35 और 36। वासाणूनतीसम पंचय मासे यवीस दिवसेय चौव्यह अणगारे ही बारह ही गणे ही विहरंतो पच्छा पावाणयरे कत्य मासे यकिन्न चौदसिये सादिये रत्तिये शेषरयम चेत्तुनिवाओ। भगवान महावीर 29 वर्ष 5 मास और 20 दिन 4 प्रकार के अनगारों वो 12 गणों के साथ विहार करते हुए पश्चात पावानगर में कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को स्वाति नक्षत्र में रात्रि को शेष रज अर्थात अघात्या कर्मों को नष्ट करके मुक्त हुए। इस प्रकार केवल काल की प्ररूपना की। 37 नंबर परिणुद्दे जिनेन्दे चौथ काल सजम भवे शेषम वासाणि तिन्नि मासा अठय दिवसा विपन्नरसा। अब महावीर जिनेन्द्र के मुक्त होने पर चतुर्थ काल का जो शेष है वह 3 वर्ष 8 मास और 15 दिन प्रमाण है। अब भगवान महावीर के निर्वाणगत दिन से कार्तिक मास में 15 दिन मक्सिर को आदि लेकर 3 वर्ष 8 मासों के बीतने पर श्रावण मास की प्रतिपदा के दिन दुखमा काल अवतीर्ण हुआ। इस काल को वर्धमान जिनेन्द्र की आयु में मिला देने पर 10 दिन अधिक 75 वर्ष मात्र चतुर्थ काल के शेष रहने पर वर्धमान जिनेन्द्र के स्वर्ग से अवतीर्ण होने का काल होता है। उक्त 2 उपदेशों में कौन सा उपदेश यथार्थ है, इस विषय में एलाचार्य का शिष्य यानी वीरसेन स्वामी अपनी जीभ नहीं चलाता अर्थात कुछ नहीं कहता, क्योंकि न तो इस विषय का कोई उपदेश प्राप्त है और न दोनों में से कोई एक में कोई बाधा ही उत्पन्न होती है, किंतु दोनों में से एक ही सत्य होना चाहिए, उसे जानकर कहना उचित है। इस प्रकार अर्थकर्ता की प्ररूपना की। अभी तक क्या चल रहा है, ग्रंथ की प्रमाणता की बात चल रही है। ग्रंथकर्ता 2 होते हैं, या एक होता है तो अर्थकर्ता और ये मूल ग्रंथकर्ता। ये पेज नंबर वो हमने 107 से बात निकाली थी, वहां से बात शुरू हो गई थी। देखो देखो कर्ता 2 प्रकार है, अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता। उसमें अर्थकर्ता भगवान महावीर है, बात आई ना, और ग्रंथकर्ता की बात अभी यहाँ 126 पर करेंगे। अर्थकर्ता की बात वहां 107 पेज से आगे यहां तक हो गई। अब ये ग्रंथकर्ता की प्ररूपना कल पढ़ेंगे अभी हम, क्योंकि ये तो अभी यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, इनका विस्तार से सब बताएंगे यहाँ पर। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देखत हो।